पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज मंगलवार जून की पहली तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं।
गाफिल तुझे घड़िया लिए देता है मना दी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है।
शांति सुने गीत सुना, बहुत गई अब थोड़ी रही। श्रीमत जो कहती है, क्या कहती है, मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, ऐसे कहती है। नहीं, किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य की जो आत्माएं हैं वो जब शरीर लेती है तो उनका नाम शरीर का पड़ता है, ठीक है। नहीं, पीछे क्या होते हैं, शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया तो दूसरे शरीर का नाम पड़ा, फिर तीसरा शरीर लिया तो तीसरे का नाम पड़ा, ऐसे भिन्न भिन्न नाम हर एक जन्म में मिलता है, ठीक है। नहीं, आत्मा का नाम नहीं बदलता है, शरीर का नाम बदलता है। ये तो बच्चों को समझाया गया है। परमपिता परमात्मा शिव वो तो घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते हैं ना, वो तो एक ही बार आते हैं, जिसको ही पतित पावन कहे जाते हैं। जरूर पतित पावन का कोई नाम तो होगा ना, ऐसे श्री पतित पावन तो देखो क्या कह देते पतित पावन, फिर कहते सीताराम। अभी सीताराम का भी अर्थ समझना चाहिए, सीताओं का राम, सीताए कहा जाता है भक्ति को। अच्छा, उनका है भगवान साजन राम, फिर जिसको कह देते हैं। तो तुम बच्चे तो जानते हो अच्छी तरह से कि सब भक्तों का इसमें बच्चियां भी आ जाते हैं, बच्चा भी जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, बुढ़े भी जाते हैं, सभी भगत। किसको याद करते हैं? भगवान को। अगर सभी भगत भगवान हैं तो फिर याद किसको करेंगे? इसलिए सभी भगत भगवान को याद करते हैं, एक को। फिर बंदगी कहो, साधना कहो, प्रार्थना कहो, करेंगे तो एक को ना, क्योंकि सबका बाप तो एक है, सबका सदगति दाता एक है। अंग्रेजी में भी बच्चों को समझाया गया, कहते हैं सबका लिबरेटर एक है, फिर सबका गाइड भी एक है। अंग्रेजी में भी उसको कहा जाता है ना लिबरेटर और गाइड, तो बराबर सभी पतितों का पावन करने वाला भी एक है, पावन करके पीछे गाइड बन करके आत्माओं के ले जाने वाला भी एक है, सभी सज्जनिया का साजन भी एक। बाबा ने समझा नहीं भक्तों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो भक्ति ही कह देते हैं, सभी भगवान को याद करते हैं। ये भी कहते हैं कि गॉड फादर परमपिता परमात्मा, परंतु उनको पहचानते नहीं है, वो कैसे हैं, कब आते हैं। हम पतितों को पावन करने से तो जरूर है, जब सारी दुनिया पतित होंगी जर्जरीभूत अवस्था में तमो प्रधान, तभी तो बाप आएंगे ना। बाप आकर के ही कहते हैं, जब सारा ये झाड़ मनुष्य सृष्टि का जर्जरी भूत हो जाते हैं, तमोप्रधान हो जाते हैं, दुष्टाचारी हो जाते हैं, हभी पापा आत्माएं बन जाते हैं, सभी के लिए कहते हैं ना बच्ची, क्योंकि सबका सदगति संभालना सभी बच्चों का, क्योंकि तो समझा दिया है कि रावण ने आकर करके हमारे बच्चों को जला दिया। सुना एक कथा में लिखा हुआ है कि सागर के बच्चे सभी भस्मीभूत हो गए थे, पीछे उनके ऊपर आकर के वर्षा की तो जाग उठे। तो ये है ना बराबर कि ये इस समय में सभी भस्मीभूत है। भस्मीभूत किसने किया है? काम शत्रु ने सबको जला दिया है, यानी क्योंकि काम से ही पैदा होते हैं, लिख से ही ये शरीर सबको मिलते हैं। तो ये तो बाप बैठ करके समझाते हैं ना बच्चों को, बेसमझ बच्चे हैं तब तो बाप आते हैं और कहते भी हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, मुझे अपने बाप को जो तुमको यौन मुक्ति देने वाला है उनको तुम सर्वव्यापी कह देते हो, इतनी गालियां देते हो, कुत्ते में है, बिल्ली में है, मच्छर अवतार, कच्छा अवतार, वारा अवतार, हनुमान अवतार, फलाना अवतार, एक तरफ तो कहते हो कि नाम रूप से न्यारा भाई जन्म मरण से रहत, फिर पतित पावन भी उन्हीं को कहते हो, फिर उन्हीं को ही कह देते हो सर्वव्यापी, मच्छ में, कच्छ में, फलाने में। ये तो आत्माएं तो जनावरों में भी अपनी है, मनुष्यों में भी अपनी है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये सभी वो उसने रूप धरे है, तो कभी हो ही नहीं सकते है ना बच्चे। तो फिर रूप धरे तो सब भगवान हो जाते हैं, और ये भगवान दुर्गति को थोड़ी पाती है, नहीं आत्मा ही दुर्गति को पाती है, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा जब पावन बनती है तो उनको चोला भी पावन मिलते हैं। देखो अभी सब जब ये शरीर खत्म हो जाएंगे सारी ये मनुष्य सृष्टि, तो जो आएंगे वो फिर सत्वप्रधान बुद्धि उनकी होंगी, पीछे रजो में आएंगे फिर तमो में आएंगे, सब ऐसे तो होते हैं, हर एक बात ऐसे होती है। मकान है देखो नया बना है, इनको सत्वप्रधान कहेंगे, फिर एजेज होती है इनकी, जब आधा होगा तो कहेंगे पीछे उनके बात कहेंगे पुरानी पुराना मकान। तो ऐसे तो सब चीज होते हैं, शरीर है पहले देखो बालक होते हैं कितना प्यारा लगते हैं, उनको फिर कहते हैं सत्वप्रधान अवस्था, क्योंकि समझाया गया है ना कि साधु महात्मा लोग और जो बच्चे छोटे होते हैं समान है, क्योंकि वो भी विकार में नहीं जाते हैं पांच विकार में, बच्चों को भी तो पता भी नहीं है, इसलिए भेंट करते हैं बालक की। तो बालक जब छोटा है, बिल्कुल छोटा है, जब सत्वप्रधान है पीछे सत्व बनता है, पीछे रज्जो बनता है, पिछाड़ी में आकर के तमो बन जाते हैं। तो हरेक वास्तु ऐसे जरूर बनती है। तो ये भी तो सारी दुनिया जो है बच्चे, इसको कहे जाते हैं न्यू वर्ल्ड फिर ओल्ड वर्ल्ड, ऐसे तो कहेंगे ना बच्ची, सत्य को कहेंगे न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया, फिर कलयुग को कहेंगे कि पुरानी दुनिया। अच्छा अब ये तो भारतवासी तो जानते हैं अच्छी तरह से, बल्कि और भी नेशन वाले जानते हैं, जब भारत नया था तो बरोबर ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसको ये स्वर्ग विष्ट हेवन पैराडाइज ये सभी नाम रखे हुए, ये भारत के ऊपर है। अभी भारत वो तो नहीं है ना, अभी किसको इसको कहेंगे कोई स्वर्ग पैराडाइज, यहाँ दुखी दुख है। तो ये समझ में आते हैं ना कि जब भारत पैराडाइज है तभी एक ही धर्म है। अच्छा भाई और सभी आत्माएं कहाँ है? वो मुक्ति धाम में है, वह निर्वाण धाम में है, या वान परस्त में है जहाँ वाणी का गम नहीं, क्योंकि उसको कहे जाते हैं साइलेंस वर्ल्ड, शांत आत्माएं शांत रहती है, अपने स्वधर्म में रहती है, उसको कहा जाता है आत्माएं स्वधर्म में रहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा को जब अपने स्वधर्म का पता पड़े तो शांति के लिए धक्का नहीं खा देगा, वो समझ जा रहे तो हमारा स्वधर्म शांत है, और हमको इन ऑर्गन से कहना है, बात करना है, खाना है, पीना है, अगर हमको शांत में रहना है तो हम अपने को अलग कर देते हैं, समझे नहीं। ओम शांति ऐसे कहते हैं नहीं, ओम माना आय आत्मा, मेरा स्वधर्म है शांति, तो शांति में बैठ सकते हैं, परंतु कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते हैं। इसलिए आत्मा कब तक शांत रहेगी, जो यह कर्म करने के लिए आए ये तो कोई मूल वतन तो नहीं है ना, शांति धाम तो नहीं है, जहाँ शरीर होते शांत में रहेंगे तो हो नहीं सकते है। शांति धाम कहे जाते हैं जहाँ आत्माएं निवास करती है, निर्वाण धाम में। अभी आए हैं हम, बाप बोलते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको, यानी अशरीरी अपन को समझो, देह अभिमान के बदले में देही अभिमानी भव, फिर अपन को आत्मा निश्चय करे। तो हे बच्चो, ऐसे कहेंगे ना बाप, हे बच्चो माना हे आत्मा हो, अब मुझे अपने बाप को याद करो, तो क्या होगा उसका नतीजा। इससे योगा अग्नि से, देखो ये योग भारत का प्राचीन बड़ा नामी ग्रामी है, परंतु था वो, जब फिर वो आवे बाप तब आके सिखला ले, नहीं मनुष्य तो मनुष्य को नहीं सिखला सकेंगे ना, ना बची मनुष्य मनुष्य को कभी भी सदगति नहीं दे सकते, जबकि यह है ही पापात्माओं की दुनिया, भेद में है नहीं। हाँ बरोबर सतयुग है शिववाद्य, तो समझाए तो बच्चों को अच्छी तरह से जानना है, तो बाप आका के धीरे देते हैं बच्चों को अभी इस समय में, पता बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन तो आए हैं नहीं, अभी जितना हो सके इतना तुम अपने बाप को याद करो, क्योंकि अंत मत्ते सागत है, ये गाया जाते हैं नहीं, अंत काल जो जो सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, वल वल जून अवतरे, फिर भी पुनर्जन्म मिलेगा। अभी बोलता है कि अब यह मृत्यु लोक है बच्चे, इसमें तुमको पुनर्जन्म नहीं मिलने का है, क्योंकि अमर लोक सतयुग कहा जाते है, इसको मृत्यु लोक कहा जाते है। अमर लोक में तुम अमर रहते हो, तुमको अकाल मृत्यु नहीं खाती है वहाँ, समझा ना बच्चे। नहीं बाप ने समझाया नहीं कि वहाँ जैसे सर्प अपनी पुरानी खल को छोड़ नहीं ले लेते हैं, मिसाल तो देते हैं, उसमें भी तो अक्ल है नहीं, कितना अच्छा अक्ल है नहीं, जब खल मिल जाती है तो पुरानी छोड़ देते हैं। तो ये मिसाल किसके लिए है, ये सतयुग में देवी देवताओं के लिए है, वो तो जब भी उनका शरीर बुढ़ा होता है नहीं, तब वो जानते हैं कि हम आत्मा को, अभी आत्मा का ज्ञान हुआ है, ये आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए बाप ज्ञान आत्मा का भी देते हैं, बच्चे तुम आत्माएं हो और तुम्हारा बाप एक है, और तुम ये जो शरीर है ऑर्गन्स इसको कहा जाते हैं, कर्म इंद्रिय, इनसे तुम कर्म करते हो, ये कर्म क्षेत्र है, समझा ना, इसमें सबको कर्म करना ही है, शांत नहीं रहना है, नहीं शांत का स्थान ये नहीं है, ये कर्म का स्थान है, कर्म बिगड़ कोई रह नहीं सकते है, कर्म का संन्यास कोई कर नहीं सकते है, समझा ना बच्ची, कैसे करेंगे कर्म का संन्यास। कर्म का संन्यास तो मूल वचन में होता है, क्योंकि वह अकेले आत्मा है, यहाँ किसका कर्म का संन्यास थोड़ी होते हैं, ये भी झूठ बात है, जो समझते हैं कर्म संन्यासी, कर्म का संन्यास हो ही बच नहीं सकते। तुम शांत में बैठ सकते हो अपने स्वधर्म में, उसको कहा जाता है रियल शांत, ये प्राणायाम प्राणायाम कर करके नाक मूंद करके नहीं, नहीं वो तो आर्टिफिशियल हो गई, उसको झूठी कहा जाते हैं, जो प्राणायाम या खदे में घुस जाते हैं ये तो अभ्यास है, समझा नहीं, ये सब तो नहीं कर सकते न बच्चे, उसमें माताएं तो कर भी नहीं सके, बिल्कुल डिफिकल्टीज है उन्हें, कोई कोई प्राणायाम चलाते चलाते बुद्धि खराब हो जाती है, माथा खराब हो जाती है, नहीं ये तो बिल्कुल ही सहज है समझने की बात की है मेरे लाडले बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत, परंतु शांत जब तुम्हारी स्वधर्म हो तो घर में रहते हो, वहाँ शांत रहते हो, उसको कहा जाते है शांति धाम, पीछे सत्य को कहा जाते है सुख धाम, यानी बाप आकर करके फिर नई दुनिया को स्थापन करते, तो कभी नई दुनिया स्थापन हो रही है ना, पुरानी का तो खड़ा सामने खड़ा हुआ है, गाया भी जाते हैं कि प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अब सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा रहते हैं उन द्वारा तो मनुष्य सृष्टि की स्थापना नहीं हो सकती है, नहीं तो वो है अव्यक्त ब्रह्म, तो फिर ये है व्यक्त ब्रह्म। यानी ये है पतित, तो वो है पावन। जब पतित पावन बन जाते हैं योगा योग और ज्ञान से, तो फिर वो बन जाते हैं। वैसे तुम भी ऐसे ही हो। सुंदर बच्ची प्रजापिता ब्रह्मा जब यहाँ है तो तुम सूक्ष्म मतन में भी उनके साथ रह जाती हो। तुम जाते हो, तुम उसका कहे जाते हैं फरिश्तों की दुनिया। सूक्ष्म मतन में फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हदिमास नहीं होता है बच्ची, वहाँ सूक्ष्म होते हैं शरीर है। सुफेद तुम लोग ने घोष्ट नहीं देखे है, नहीं घोष्ट जिसको भूत कहते हैं, नहीं जो जिसकी जिसको शरीर फट से नहीं मिलता है, नहीं वो भटकते हैं, तो छाया रूपी उनका शरीर होते हैं। वो देखने में आते हैं जैसे मनुष्य जाता है, पर छाया रूपी, समझा नहीं, उनको पकड़ो तो पकड़ने नहीं देते हैं, यहाँ तक भी आ जाते हैं। उसको उसको फिर दूसरे अक्षर में गोष्ट भी कहते हैं कि आत्मा जब तक उनको शरीर मिले तब तक ऐसे भटकती है। तो वो तो अब दूसरी दुनिया उनसे कोई ताल्लुक तो है नहीं। इस ज्ञान मार्ग में ये समझाया जाते हैं कि बच्ची तुम अपने बाप को याद करने से क्या होगा, तुम्हारे ऊपर जो विकर्म है वो जल जाएगा। अभी टाइम तो बहुत थोड़ा हुआ है। तब गाया जाते हैं कि बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की थोड़ी समय रही है, इसलिए जितना हो सके इतना अपने बाप को याद करो। तो क्या होगा, अंत मत्ते सागत, तो देखो है भी नहीं हुआ, लिखते तो हैं गीता में एक दो अक्षर, राइट बाबा ने कहा है नहीं, ये शास्त्रों में जैसे आटे में लून कर कोई सच्चे अक्षर है, बाकी सब झूठ, समझे। अब उसमें कहते हैं कौन कहते हैं, भगवानो वाच्य। अभी पहले तो भगवान कौन है उसका मालूम पड़ना चाहिए, भगवान निराकार है। कैसे वाच्य कहते हैं बोलता है, मैं साधारण ब्रह्मा के तन में, जिसका नाम हम खुद रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, उसके तन में शरीर में प्रवेश कर, और फिर मैं क्या कहता हूँ, ज्ञान देते योग सिखलाते हे बच्चे, यानी आत्माओं से बात करते हैं, अभी बच्चे निरंतर मुझे याद करो। अभी ये दुनिया विनाश को पाने वाली है, समझे नहीं, मैं आता ही हूँ। एक धर्म की स्थापना जो प्राय लोप है, और फिर बाकी धर्मों का विनाश, तो बरोबर अभी तो बौद्ध धर्म है, अथाह धर्म है, लाखों धर्म है ऐसे समय में, समझे नहीं, लाखों तक तो करोड़ों धर्म होंगे, तो अनेक हो गए ना बच्ची। अच्छा, सतयुग में भारत में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और तो कोई था ही नहीं। तो समझाते हैं ना बच्चे कि बराबर ये जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुक चुक कर कर करके, इसको कहे जाते हैं क्यामत का समय, सीग्रीगेशन का समय, हिसाब चुक चुक होने का समय, सबका दुख का हिसाब सब चुक चुक होकर, यानी पापों का दुख मिलता है पाप के कारण, ये पापों का हिसाब चुक चुक हो और फिर पुण्य का हिसाब शुरू होते। तो जो मनुष्य पहले वहां से आते हैं, पापा आत्माएं तो नहीं जा सकेंगी ना, उनको जरूर पुण्यात्मा, तो देखो आग में लग पाती है, हर एक चीज को शुद्ध करने के लिए आग जगाई जाती है। देखो जब यज्ञ भी रचते हैं तो देखो आग जगाते हैं, उसमें ये काठी वगैरह दे करके हवन करते हैं, ये करते हैं। पर तो बाबा बोलता है ये तो कोई मटीरियल यज्ञ तो नहीं, नहीं हवन फवन तो नहीं है ना, ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसको गाया ही ऐसा गया है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ, ऐसे कहते ही नहीं है कि कृष्ण ज्ञान यज्ञ, ऐसे बच्ची है नहीं। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा है, कृष्ण तो सत्युग में ना प्रिंस है, वो वहां का एक यज्ञ यज्ञ रचे जाते हैं जब ये आफतें होती है। तो देखो आफतें हैं ना इस समय में, तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं पर रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रच सकते। रुद्र तो रुद्र आकर के ज्ञान यज्ञ रचेगा, अचान परम पिता परमात्मा आकर के रचते हैं नहीं। फिर कहते हैं कि ये जो यज्ञ है रचा हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें सब जो भी यज्ञ है वो सभी आहुति हो जाएंगे, सभी भी बन से जो भी है सब आहुति आ जाएंगे, क्योंकि बहुत यज्ञ बड़ा है, इतना यज्ञ सभी तो बाबा आया हुआ है, ये यज्ञ रचा हुआ है, कितना बरस हो गया, इतना कोई यज्ञ थोड़ी कोई रच सकते हैं ना। ये यज्ञ रचना है जब तलक की बादशाह स्थापन हो जावे, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, और वो पावन बन जाए। तो पावन फट से तो कोई नहीं बनते है नहीं बच्चे ना। ये तो योग से बने तो योग लगाते रहो अंत तक लगाते। तो यह है योग की रेस। कैसी रेस? कि हम रुद्र को यानी बाप को याद करते हैं, जो जितना जास्ती याद करेंगे वो जैसे कि दौरी जास्ती पहनते हैं, दौरी जास्ती पहनते हैं तो जाकर के उसके गले का हार बनेंगे, उसको कहा जाता है रुद्र माला। फिर गले का हार बन करके आकर के विष्णु की माला बनते हैं, समझा नहीं? इसलिए दो मालाएं मशहूर है, विष्णु के गले में फूल की माला, क्योंकि तुम कांटे से फूल बनते हो, समझे नहीं? रावणपुरी से विष्णुपुरी जाते हो तो विष्णु की माला बन जाते हो। पहले रुद्र की माला, पहले घर जरूर जाना है बाप के पास, बाप ले जाते हैं नहीं, पीछे जो जो पुरुषार्थ करेगा वो नरसिंह नारायण बन और नारी से लक्ष्मी बन हो गया दो रूप विष्णु के, वो पीछे जाकर के राज करते हैं। तो गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्वराज स्थापन हो रहा है। अभी सतयुग में तो नहीं होगा, स्थापना तो यहाँ होगी नहीं, पतित तो यहाँ पावन बनेंगे नहीं, लायक यहाँ बनेंगे नहीं। तो देखो तुमको राज योग सिखलाए रहे हैं, कैसे? जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, और ये योग मैं हर 5000 वर्ष बाद, हर कल्प के बाद तुमको सिखलाते आते हैं। और तुमको ये पूरा निश्चय भी है कि बराबर बाप आते हैं जब भारत बिल्कुल ही जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं, बिल्कुल ही कंगाल हो जाते हैं, तो बाप आकर है नहीं, शिवरात्रि है नहीं, आता तो है नहीं, तो शिव जयंती भी कहते हैं, शिवरात्रि भी कहते हैं। तो शिवरात्रि, रात्रि कौन सी रात्रि? रात्रि वो नहीं है जिससे जिस रात्रि में श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, वो घड़ी देखते हैं, कला देखती है, वो देखते हैं, वो देखते हैं, ना ना इसका कोई पता ही नहीं है। परंतु रात किस किसको कहा जाता है? भाई कलयुग का अंत सत्य की आद, यानी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आद। तो बराबर दिन है सत्य और त्रेता दिन, फिर द्वापर कलयुग रात, इसको कहा जाता है बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की, समझा नहीं? दिन और रात भी तो गाया हुआ है, किसका? ब्रह्मा का। कृष्ण का नहीं गाएंगे क्योंकि कृष्ण को ज्ञान नहीं है, यहाँ ब्रह्मा को ज्ञान मिलते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ज्ञान बाप से मिलते हैं और तुम बच्चों को फिर ब्रह्मा से मिलते हैं। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, कौन सा? ये सारे सृष्टि के चक्कर का तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं बच्चे। मनुष्य सृष्टि में कोई एक भी त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है, समझा नहीं? अगर हो गए तो ये नॉलेज देवे नहीं कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। कभी भी कोई सत्संग में कभी भी कोई नॉलेज दे नहीं सकते हैं बच्चे। तो ये बाप जब आते हैं तो मनुष्य तो जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हो बच्चे। अभी भगवान तो एक सबका, कभी भी मुसलमान ये जो पारसी वगैरह को श्री कृष्ण को भगवान से नहीं मानेंगे, नहीं, वो ये जानते हैं कि बरोबर ये राजकुमार है। अभी राजकुमार कोई भगवान होता है क्या? राजा ही भगवान ले तो फिर राजा ही घुमा ले भी, तो भगवान तो राज हो। तुम बाप कहते हैं बच्चे तुमको राजधानी का मालिक बनाए विश्व का, मैं फिर निर्वाण धाम में ही रहता हूँ, यानी परम धाम में ही रहता हूँ, समझा नहीं? फिर सतयुग और त्रेता में कोई तकलीफ तो होती नहीं है, न कोई मुझे पुकारते हैं, इसलिए मैं निर्वाण में रहता हूँ, समझा नहीं? बस मनुष्यों को कोई भी दुख नहीं है। फिर जब दुख होने शुरू करते हैं तो मेरा पाठ भी शुरू हो जाते हैं, मैं सुनाई करता हूँ, मुझे बहुत पुकारते हैं, याद करते हैं, हे भगवान हे रामदेव ऐसे शुरू कर देते हैं। क्यों? कि माया का राज शुरू हो जाते हैं और दुख थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाते हैं। तो बाप ने समझाया नहीं अच्छी तरह से, तो भक्ति कैसे शुरू होती है? पहले पहले जो पूज्य थे, जो पुजारी होते हैं, वो पहले अव्यभिचारी पूजा करते हैं, यानी शिव की पूजा करते हैं, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी पूजा, उसको भी कहा जाता है सतोपधान पूजा भक्ति। पीछे रज सतो के पीछे, सतोपधान के पीछे सतो, पीछे शिव की पूजा छोड़ करके देवताओं की पूजा शुरू करते हैं, है नहीं? जानते नहीं है, क्योंकि पुजारी जान कैसे सके, कोई को भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते, बस पूजा शुरू हो जाती है। फिर शिव की पूजा, फिर शिव का बैठ के नाम डालते हैं, जन प्रतिदिन तो पहले पहले नाम एकदम शिव का होता है, समझा नहीं? क्योंकि शिव कहो या सोमनाथ कहो, बात एक ही है। शिव बाबा तो निराकार ठहरा, अच्छा सोमनाथ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि बच्चों को आके सोमरस पिलाया, ज्ञानामृत पिलाया, इसलिए नाम पर गया सोमनाथ। पीछे जो बहुत ही नाम पर गए हैं, शिव बाबा के ऊपर ढेर के ढेर नाम पर है। वो बॉम्बे है, उसमें कहा बबली बबलीनाथ, बबलनाथ यानी बबुल जो कांचे थे नहीं, उनको फूल बनाने वाला। अभी तो उसका अर्थ तो कोई समझते ही नहीं है। ऐसे बहुत ही नाम डालते हैं, अर्थ है सब हमें कि क्यों ऐसा नाम, ऐसे एक का नाम क्यों रखते हैं। तो है ना बच्चे, सर्व का सदगति जाता एक है। उनके लिए अगर कह देते हैं सर्वव्यापी है कुत्ते में बिल्ली में, ये तो गिला नहीं है। तो बाब कहते हैं जब संगम का समय आते हैं, मैं सिर्फ एक बार ही आता हूँ, मैं कोई इतने अवतार लेता ही नहीं हूँ, परशुराम अवतार फलाना अवतार नहीं, ये सभी बनाए हुए भक्ति के, ये सब जो भी है भक्ति के कर्म कांड की किताब है या पुस्तक है या शास्त्र है, बाकी मुझे कोई भी नहीं जानते। न कि ऐसा है कि भक्ति करने से मुझे मिलते हैं, ना ना ऐसे भी नहीं। जब सब भक्ति का समय पूरा होते हैं, रावण राज पूरा होते हैं, रावण राज शुरू होता है और भक्ति शुरू होती है, जब ये पूरा होता है आधा कलम, तब मैं फिर आता हूँ। ये ड्रामा में एक नियम है, ऐसे नहीं है कि कभी मुझे कोई बहुत याद करे। अरे बहुत ही है, लड़ाइयां लगी हुई है, अंग्रेजों की लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई, पुकारा तो व्रत मैं कभी आया हुआ हूँ क्या? नहीं, मैं कभी नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ एक बार। बाप एक तो अवतार भी एक, आता भी एक दफा हूँ बस, एक दफा। कहते हैं नी पतितों को पावन करने वाले लिए आओ, अच्छा फिर हमको बोला कब बुलाएंगे जो मैं आऊँ? क्या द्वापर में आऊंगा? नहीं, द्वापर के पीछे तो कल आयुग है, मुझे जरूर कल आयुग के अंत और सत्य के आदमी आना पड़ता है, मेरा एक ही बार आना होता है, और आकर के फिर सबको योगी बनाता हूँ पूरा। तो भी कौन से योगी? राजयोगी, तो मैं राजयोगी, और वो जो संन्यास है वो हठ योग। तो हठ योगी राजयोग नहीं सिखला सकते हैं, बाबा राजयोग पर हठ योग थोड़ी सिखलाएंगे, सिखलाना उनका किसका है? ये पुरुषों को, फीमेल को थोड़ी जंगल में जाना है ना, वो भी एक धर्म है, जैसे भारत का, भारत को खड़ाने के लिए, क्योंकि पवित्रता चाहिए ना बाकी भारत में, भारत जैसा पवित्र और कोई बनता ही नहीं है, समझा नहीं? 100% पवित्र और फिर 100% पतित। तो गाते भी है नहीं, पतित पावन आओ, पावन कैसे बनाओ? ये देवताओं का जैसा बनाओ, देवता बनाओ, ऐसे ही कहेंगे, और तो कोई नहीं कहेंगे। नहीं, सन्यासी कहेंगे हे पतित पावन आओ, हमको पावन दुनिया वो है पावन आत्माओं की दुनिया, और सत्युग है पावन जीवात्माओं की दुनिया। तो वो तो उनको पुकारते हैं ना, बाबा हम पतित को तो ग्रस्त धर्म है नहीं, हमको पावन ग्रस्त धर्म बनाओ, क्योंकि भारत में पावन ग्रस्त धर्म था, अभी पतित है ग्रस्त धर्म। तो पतित ग्रस्त धर्म को पावन ग्रस्त धर्म, तो कोई ग्रस्त का संन्यास करने वाले थोड़ी बना सकेंगे ना, उनका क्या है? फिर बाप बताते हैं वो पवित्र रहते हैं, इसलिए भारत थमा रहते हैं, समझा नहीं? और सच भी बोलते थे, नेची नेची हम न रचिता को जानते हैं न रचना को जानते, तो बेअंत है। अभी जब तक हम प्रधान बने हैं तो कह देते हैं शिवो हम सभी ईश्वर के रूप है, समझा नहीं? पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि उस समय में सत प्रधान अवस्था में थे, फिर सत्तों में रजों में, अभी सभी ही है नव प्रधान अवस्था में, सारी दुनिया बिल्कुल ही। तब बाप कहते मैं आता हूँ तमो प्रधान को 100% तमो प्रधान वालों को 100% सत्व प्रधान बनाता हूँ। पीछे सबको तो सत्युग में नहीं ले आता हूँ नहीं, क्योंकि सब तो सत्युग में होते ही नहीं। सत्युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म होते हैं, पीछे धर्म पीछे आते हैं सभी। सभी तो नहीं जाएंगे स्वर्ग में, नहीं, बाकी जो आते हैं उनको मुक्ति। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता ही एक है, और न कोई। मनुष्य मनुष्य को कभी भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, इसलिए गुरु कहलाने के हकदार नहीं है। तो ये गुरु किसके हैं? ये भक्ति मार्ग के गुरु, यह है ज्ञान मार्ग के गुरु, वो है भक्ति मार्ग के गुरु। तुम हो ज्ञान मार्ग के बाबा जो है ज्ञान सागर, उनके बच्चे तुम रूहानी यात्रा कराएंगे, और वो जो है सब साधु संत सन्यासी वो सभी जिस्मानी यात्रा देखो जाते हैं नहीं तो जिस्मानी यात्राओं के ऊपर भी ग्रस्त धर्म वालों का धंधा है। कोई सन्यासी का कर्म नहीं है भक्ति करना, नहीं, वो भक्ति छोड़ देते हैं, ग्रस्त धर्म को ही छोड़ देते हैं। तो भक्ति है ग्रस्त आश्रम वालों को, न कि सन्यासियों के लिए। परंतु पहले जंगल में रहते थे, फिर जब तम उपाधान बनते हैं ये रजो, तो फिर घुस आते हैं अंदर, समझे। पीछे ये जिस्मानी जैसे पंडित, जैसे ये पंडित भी बन जाते हैं, ये यात्रु भी बन जाते हैं, यात्रुओं के जज्ञासुओं के गुरु भी बन जाते हैं, फिर जैसे अंदर घुस जाते हैं। कहते हैं मुख से कि हम घर बार छोड़ने वाले हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, समझो नहीं। उनको एक पैसा भी नहीं ले जाते हैं बच्चे, कायदा से सन्यासी एक पैसा नहीं ले जाते, चले जाओ गुरु के पास। अभी देखो तब उपाधान बनने का कहा कितने लखपति करोड़पति है आजकल सन्यासी, अरे करोड़पति है, दस दस बीस बीस करोड़ है उनके पास। जब कहते हैं हमने हर्ट एंड होम यानी घर बार छोड़ा, पीछे पैसे की क्या दरकार है उनको, नहीं, तमो प्रधान बन जाने से पीछे घुस जाते हैं, पीछे लखपति करोड़पति हो जाते हैं बच्चे, दूसरों से भी ये शाहूकार हो जाते हैं। जो फिर मुख से कहते हैं कि हम घर बार छोड़ा हुआ है, तो ये एडल्ट्रेशन करप्शन हुई ना, धोखा हुआ ना बच्ची, करप्शन को धोखा। अभी ये कहना सर्वव्यापी, अभी तो धोखा हुआ नहीं। तब बाप आकर कहते हैं बच्ची ये जो गुरु लोग हैं नहीं, इन सबको छोड़ो, गीता में तो लिख दिया इनको मारो, मारने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि तुम नॉन वायलेंस हो, तुम अहिंसा अहिंसक हो, हंसक नहीं हो, न कोई को कोई से लड़ते हो, न कोई को ऊपर काम कर चलाते हो। तो देखो इस काम पर जीत पहना मेहनत है ना बच्ची, सन्यासी घर बैठे नहीं जीत सकते हैं, इसलिए भाग जाते हैं। और तुमको तो घर में बैठ करके भी रह करके भी तुमको विकार को जीतना है। युक्ति यही होती है कि तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन जाने से शिव बाबा से वर्षा लेते हो, इसलिए तो भाई बहन हो गए। यूं वास्तव में हिसाब करें, जब हम सभी भगवान के बच्चे हैं, निराकार पीछे साकार ब्रह्मा द्वारा, तो भाई बहन तो ठहरे नहीं, वास्तव में तो सभी भाई बहन ठहरे नहीं, पीछे बिरादरियां निकलती है, समझा नहीं। परंतु वास्तव में हिसाब करें कि जब हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर हमको निर्विकारी बनना चाहिए। भाई भाई हुए ब्रह्मा के द्वारा, फिर भाई बहन होते हैं। तो भाई बहन जब हो ब्रह्मा कुमारी और कुमार, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। अच्छा, न विकार में जाने से तुमको इसके लिए क्या मिलता है? अरे विश्व की बातचीत मिलती है, सिर्फ एक जन्म निर्विकारी रहने से, अंतिम जन्म। इसको बहुत जन्म के अंत के जन्म का भी अंत। इसमें अगर ग्रस्त धर्म में रहते हुए कमल फूल के समान तुम निर्विकारी रहे, पवित्र रहे, तो देखो कितना ऊंचे पद मिलते हैं। तो स्टेटस हुई ना, एम एंड ऑब्जेक्ट है नहीं, भाई यहाँ आए हुए हैं फिर देवी देवता बनने। अभी देवी देवता तो यहाँ तो सभी भ्रष्टाचार है, देवी देवता कौन बनाएंगे? विश्व का मालिक कौन बनाएंगे? तो विश्व का जो है रचता वो बनाएंगे नहीं, तो कोई सभी समझ की बात है नहीं। अभी तुम सभी समझदार बनते हो, सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है ये सब तुम्हारे में जान है, इसलिए तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन हुआ, नॉलेज मिली, इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसे नॉलेज मिली, परमपिता परमात्मा जिसको ही नॉलेज फुल कहा जाते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जो बीज है वो चैतन्य है और उनको ही कह देते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। तो जरूर आना पड़े ना उनको, तो देखो अभी आए हैं, देते हैं नॉलेज, समझाते हैं मैं हूं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी तो अनेक बीज है। और ये भी जानते हो बीज से झा कैसे होता है, तुम जानते हो, ये भी उल्टा वृक्ष है, इसको आ जाता है उल्टा वृक्ष, बीज ऊपर और झा नीचे, समझा नहीं, हम रहने वाले आत्मा तो ऊपर है नहीं, और ये आए हुए नहीं झाड़ में, देखो पहले पहले दैवी झाड़, ठीक है ना बच्चे, पीछे इस्लामी झाड़, फिर बोधि झाड़, क्रिश्चियन झाड़, फिर उनमें मल्टीप्लिकेशन, तार दार दार दादिया, अभी ये तुमको ज्ञान मिला अच्छी तरह से, इससे कल अपने ये दूसरा तो कोई दे नहीं सके न कोई शास्त्र में है। क्यों शास्त्र में नहीं है, जो तुम सुनते हो अभी तो तुम्हारे बुद्धि में रहा, भले तुम कुछ लिखती भी हो, पर ये तो सब विनाश हो जाएगा नहीं, सत्यों में तो कोई शास्त्र वगैरह होते ही नहीं है, बिल्कुल ही मंदिर मंदिर तो होते ही नहीं है, कुछ भी नहीं होते, ये सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री, ये पीछे निकलती है, सत्युग में है नहीं, सत्युग में तो महल हीरे जवाहरों का और राजभाग तुम हो, ये जो इनहेरिटेंस वर्षा पाती हो वो तुम भोगती हो। तो अभी कितनी अच्छी कहानी है, हा? तुम कह सकते हो नहीं भाई, लॉन्ग लॉन्ग अगो एक कहानी कथा, 5000 वर्ष पहले यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये लक्ष्मी नारायण का राज था, पीछे जब त्रेता आया, देखो लॉन्ग लॉन्ग अगो की आखानी ये तो समझ सकते हो, त्रेता आया श्री सीता और राम का राज चला, चलो भाई जब उनका भी आधा काल चंद्रवंश का पूरा हुआ, सूर्यवंश के बाद चंद्रवंशी, तब फिर माया की प्रवेशता हो गई, पीछे दूसरे धर्म आने लगे भाई, इस्लामी धर्म आया मुख्य, पीछे बोधि, अभी देखो लॉन्ग लॉन्ग को तुम आखा सुनाती हो नहीं, बिल्कुल सहज है, पीछे इस्लामी, फिर बोधि, फिर क्रिश्चियन, और फिर वगैरह वगैरह वगैरह, यानी झाड़ को तार डाल डालिया छोटी छोटी निकल के झाड़ पूरा हो गया, अभी जातम प्रदान हो गया, अच्छा चरित करेंगे, अभी ये कितना सहज ज्ञान है, अच्छा बाबा अभी विदाई लेते हैं, हिंसा वाचा कर्मणा कोई को दुख न देना है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं थॉट वर्ड और डीड, उसको भी दुख नहीं देना है, अभी सब जाना तो नहीं, किसको कहना नहीं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, नहीं भगवान है, कृष्ण तो पुनर्जन्म लेते हैं, मनुष्य है तो गुस्सा खाते हैं, अच्छा देखते हैं कि इनको गुस्सा लगता है तो उनको नहीं बताना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अच्छा भाई तुमको गुस्सा लगता है नहीं, अच्छा अब अपने ही जिस मत पर हो उस पर कायम रहो, फिर छोड़ देना, बस ये एक ही बात पर है सब, तुम बहुत तीक तीक करते हो नहीं तभी मुंह जी जाते हैं मनुष्य, तुम्हारी बात ही एक है, जिसने भारत को कंगाल बनाया है ये एक बात, पाप को कुत्ते में बिल्ली में गालियां पिछाड़ी गाली, बहुत डिफेमेशन किसकी हुई है गॉडफादर की, वहां के कहते हैं जब तुम मेरी और मेरे देवताओं की गिलानी करते हो, कैसे गिलानी करते हो, मेरे को सर्वव्यापी, चलो कुत्ते में बिल्ली में कच्छे में मच्छे में लगाई दिया, ठीक है बच्ची, कहते हो भाई पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, दूसरे तरफ कहते हो कच्छ में अच्छे में भीतर में छकर में कण कण में, चलो दिया गाली, देखो समझाते हैं नहीं, बड़ी गाली दिया नहीं, चलो पीछे हो पीछे कह देते हो शंकर पार्वती के ऊपर पीछा दिए सेकंड नंबर में, क्योंकि पहले नंबर में है शिव बाबा, पीछे नंबर में सेकंड शंकर, शंकर के ऊपर भी तुमने वो धतूरा खाते हैं भांग पीते हैं, वो पार्वती के ऊपर पिछाड़ी हुई पीछे बिछुआ और चुंडन पैदा हो गए, ये क्या बातें हैं या नॉनसेंस है, अच्छा सेकंड नंबर में उनकी गिलानी, अच्छा फिर थर्ड नंबर में आओ ब्रह्मा की, ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर फिदा हुआ फलाना हुआ टीया उसके ऊपर, ये क्या देखो ये हुई हुई, अच्छा आओ विष्णु के ऊपर, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, छोटेपण में कृष्ण, चलो कृष्ण को भी तो गाली तुमने दे दी, कृष्ण को 108 रानियां थी 16000 रानियां थी, वो देखो उनके भी गाली थी, बड़े बड़े समझाते जज करो कि बरोबर है ऐसे, तो सबको हुआ, शिव को भी हुआ, जो रचता है। फिर उनके सिकंद में आओ शंकर, उनको भी शिव शंकर से मिला दिया, बैल के ऊपर बैठा दिया। चलो अरे अरे बैल कहाँ से आया सूक्ष्म वतन में, तो मूर्खता हुई ना बच्चे हा? अभी सभी मूर्ख। अच्छा फिर उसकी भी बता दी कि ब्रह्मा की भी करते हैं भाई, फिदा हुए फल रहा चीज। अच्छा फिर आओ विष्णु के ऊपर, ये तीन है ना बच्चे ऊंचे तो ऊंचे। अच्छा विष्णु के भी दो रूप है, लक्ष्मी और नारायण, ये भी उनको पता तो है नहीं, परंतु नहीं लक्ष्मी और नारायण तो पहले है कृष्ण और राधे। उसमें राधे को इतनी गाली नहीं दी, कृष्ण को ठोकर के गाली दी कि उसको सर्प ने डसा, 108 रानी थी, अभी 108 रानी थी और भगाते थे और सर्प ने डसा, वो ज्ञान कैसे देंगे उसको, पतित पावन कैसे कहेंगे जिसको 108 स्त्री, उनको पतित पावन कैसे कहेंगे जो तो कोई किसी दिन भूल है। और जब बताते हैं तो मनुष्यों को मिर्ची लगते हैं, सच बताओ तो मुठों को लाल मिर्ची लगती है, अब क्या करें भगवान। अच्छा बच्ची चले जाओ मीठे सिक्के लगे बच्चों पर, मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा ते सुख घनरे। गाय तो जाते है नी, लोक माँ बाप की तो ये महिमा नहीं है, नहीं जरूर परलोक माँ बाप है, तो मात पिता भी जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान रचिता है, माता भी जरूर होंगी। तो कहते हैं नहीं तो मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा ते सुख घनरे मिलते हैं। अभी कब मिलते हैं बेचारे गाते आते हैं पता नहीं है उन लोगों, शास्त्र में तो कल्प की आयु लगाई थी लाखों वर्ष घोर अंधेरे में। अभी तुम जानते हो बरोबर, हम तुम मात पिता हम बालक तुम्हारे से राजयोग सीख करके स्वर्ग के सदा सुख के वर्षा ले रहे हैं, समझा नहीं। संन्यासी सुख को कांग विष्ठा समान समझते हैं, अभी जो कांग विष्ठा समान सुख समझते हैं राज को कैसे जानेंगे, राज कैसे करेंगे। तो जो तुम राजा थे सो फिर याद करते तुम्हारी कृपा थे सुख घनरे फिर से मिलेगी, वो भी समझते नहीं है बाकी कहते रहते तुम्हारी कृपा थे सुख घनरे। अब तुम जानते हो हमारी जो पुकार थी वो अभी पूरी हो रही है, बाप आकर के हमको फिर राजयोग सीख ले रहे। अच्छा मीठे मीठे से किला दे बच्चों, फिर मात पिता बाप दादा का याद क्या, गुड मॉर्निंग।